ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 186। विद्याधरी बोली, हे मुनीश्वर, सब पदार्थ निरंतर अभ्यास से सिद्ध होते हैं। तुम्हारा शिला में दृढ़ निश्चय है, इसे तुमको शिला ही दिखती है और मुझको इसमें सृष्टि दिखती है। जब तुम्हारा संकल्प भी मेरे संकल्प के साथ मिले, तब तुमको भी यह जगत भासित हो। यह जगत जो स्थित है सो मेरे अंतवाहक में है। आदि वपु सबका अंतवाहक है, अतः अंतवाहक में सबकी एकता है। जैसे समुद्र में सब तरंगों की एकता होती है, हे मुनीश्वर, जब तुम धारणा का अभ्यास करके शुद्ध बुद्धि को प्राप्त होंगे, तब तुमको इस शिला में सृष्टि भासित होगी। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब उसने इस प्रकार मुझसे शुद्ध युक्ति कही, तब मैंने पद्मासन लगाकर सब विषय त्याग दिए और कथा के क्षोभ का भी त्याग कर अपने आदि भौतिक का भी त्याग किया। तब निरंतर शुद्ध बोध का अभ्यास करने से मुझ में बोध का अनुभव उदय हुआ। जैसे मेघ के अभाव से शरत काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही कलना से रहित मुझ में शुद्ध बोध का अनुभव उदय हुआ। जो उदय और अस्त से रहित परम शांत रूप है, उसमें वह शिला मुझको आकाश रूप देख पड़ी और शिला तत्व से केवल बोध मात्र दृष्टिगोचर हुई। पृथ्वी आदि तत्व कोई मुझको नजर न आए, केवल अद्वैत आकाश आत्म तत्व मात्र अपना रूप ही दृष्टिगोचर हुआ। पर जब बोध मात्र से अंतवाहक रूप होकर स्पंदन फुरा, तब अंतवाहक से उस शिला में सृष्टि भासित होने लगी। जैसे मनोराज्य की सृष्टि होती है और बोध से भिन्न भिन्न नहीं होती, वैसे ही वह सृष्टि मुझको दिखी और शिला का रूप प्रतीत हुई। जैसे स्वप्न के ग्रह में शिला दिखे तो वह अनुभव ही शिला और ग्रह रूप होकर भासित होती है, कुछ भिन्न नहीं होता, वैसे ही वह शिला देख पड़ी। हे रामचंद्र जी, जैसे मैंने आकाश रूप वह शिला देखी है, वैसे ही सब जगत चिदाकाश रूप है, कुछ द्वैत नहीं है। सर्वदा आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है, पर आत्मा के अज्ञान से द्वैत भासित होता है। जैसे कोई पुरुष स्वप्न में अपना सिर कटा देखे और रुदन करे, पर जाकर अपने को ज्यों का त्यों देखता है, वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोता है, तब तक जगत भ्रम नहीं मिटता। जब स्वरूप में जागकर देखेगा, तब सब भ्रम मिट जाएगा और केवल अपना ही रूप भासित होगा। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य देखो कि जो वस्तु सतरूप है वह असत की नहीं भासित होती है। आत्मा सदा सतरूप है पर अज्ञान से नहीं भासित होता, और जो असत्य रूप है वह सत की नहीं भासित होता है। शरीर आदि दृश्य असतरूप है, वे सत्य होकर भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और शरीरादिक परोक्ष है, पर अज्ञान से शरीरादिक प्रत्यक्ष लगते हैं और आत्मपद परोक्ष लगता है। हे रामचंद्र जी, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और इस लोक अथवा परलोक की क्रिया जो सिद्ध होती है वह संपूर्ण आत्मसत्ता से ही सिद्ध होती है। प्रत्यक्ष प्रमाण आत्मसत्ता से ही भासित होता है। आदि प्रत्यक्ष आत्मा ही है और सब कुछ आत्मा के पीछे जाना जाता है। जो पुरुष कहते हैं कि आत्मा योग और मन से प्रत्यक्ष होता है वे मूर्ख हैं। आत्मा सदा प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष अधिक प्रमाण भी आत्मा से ही सिद्ध होते हैं। माया इसी का नाम है कि सदा अपरोक्ष वस्तु आत्मा को परोक्ष जानना और शरीर अधिक असत्य को सत्य मानना। हे रामचंद्र जी, जितने जीव हैं उनका वास्तव रूप ब्रह्म ही है। उनमें आदि फुरना अंतवाहक रूप हुआ है, उसके अनंतर आदि भौतिक भासित होने लगा है। लोग भ्रम से आदि भौतिक को अपना रूप जानते हैं, पर जो सदा निर्विकार निराकार निर्गुण स्वरूप अपना रूप अनुभव है उसको कोई नहीं जानता। सब जीवों का आदि शरीर अंतवाहक है, वह शुद्ध आत्मा का किंचन केवल आकाश रूप है और कुछ बना नहीं। संकल्प करके आदि भौतिकता दृढ़ हुई है, मिथ्या भ्रांति से भासित होती है। जैसे स्वप्न में आदि भौतिक शरीर भासित होता है वैसे ही जागृत में आदि भौतिक शरीर भासित होता है। अंतवाहक अविनाशी है, इस लोक और परलोक में इसका नाश नहीं होता। वास्तव में बोध स्वरूप से भिन्न कुछ नहीं, भ्रम से आदि भौतिक दिखता है। जैसे सूर्य की किरणों में जल, सीपी में रूपा, रस्सी में सर्प और आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, वैसे ही भ्रम से अपने में आदि भौतिक शरीर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, यह आश्चर्य है कि सत्य वस्तु असत्य लगती है और जो असत्य वस्तु है वह सत्य लगती है। इसका कारण अविचार है। यह मोह का महात्म्य है कि सबका आदि जो प्रत्यक्ष आत्मा है उसको लोग अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जगत को प्रत्यक्ष जानते हैं। हे राम जी, यह जगत भ्रम से भासित होता है और स्वप्न की नहीं मिथ्या है। जिन पदार्थों को जीव सुखरूप मानते हैं वे दुख के कारण है, क्योंकि इनका परिणाम दुख है। इनसे प्रथम क्षीण सुख लगता है और फिर उनके वियोग से दुख होता है। इसी कारण इनका नाम आपात रमणीय है। इनको पाकर शांतिमान कोई नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का क्षीण सुख होता है और फिर उसके वियोग से दुख होता है, क्योंकि उस जल को पाकर कोई तृप्त नहीं होता, वैसे ही विषयों के सुख से कोई तृप्ति नहीं होती। जो उनमें लगते हैं वे मूर्ख है। जो अति उत्तम सुख है वह अनुभव से प्रकाशित होता है, उसको त्याग कर विषय के सुख में जो लगते हैं वे मूर्ख हैं, वे शुद्ध आकाश रूप अंतवाहक में जगत देखते हैं। हे रामचंद्र जी, जगत जाल हुए कि नहीं भासता है तो भी हुए नहीं है। जैसे स्थानों में पुरुष दिखता है तो भी हुआ नहीं, और जैसे सुवर्ण में भूषण दिखते हैं वैसे यह जगत प्रत्यक्ष दिखता है पर कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, प्रत्यक्ष प्रमाण भी नहीं है तब अनुमान आदि प्रमाण कहां से सत्य हो? जैसे जिस नदी में हाथी बहे जाते हैं उसमें रुई के फाये बहने में क्या आश्चर्य है, वैसे प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय जगत को जब असत्य जाना तब अनुमान प्रमाण से क्या वह सत्य होता है? हे रामचंद्र जी, केवल बोध मात्र से जगत कुछ बना नहीं, हमको तो सदा ऐसे ही लगता है, पर अज्ञानी को जगत भासित होता है। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न में पर्वत देख पड़ते हैं और जागृत पुरुष को नहीं दिखते, वैसे ही अज्ञानी को यह जगत दिखता है, पर हमको तो आकाश समुद्र पर्वत सब केवल बोधमात्र लगते हैं। जैसे कथा के अर्थ श्रोता के हृदय में होते हैं और जिसने नहीं सुनी उसके हृदय में नहीं होते हैं, वैसे ही मेरे सिद्धांतों को ज्ञानवान जानते हैं, अज्ञानी नहीं जान सकते। हे रामचंद्र जी, जितना कुछ आदि भौतिक जगत दिखता है वह अप्रत्यक्ष है और आत्मा सदा प्रत्यक्ष है। जो इस लोक अथवा परलोक का अर्थ है वह अनुभव से सिद्ध होता है, क्योंकि सबका आदि अनुभव प्रत्यक्ष है। उसको त्याग कर जो देहादिक दृश्य को अपना रूप जानते हैं और इन्हीं को प्रत्यक्ष जानते हैं वे मूर्ख पशु और पत्थर से हैं और सूखे तृण की नहीं तुच्छ है। जैसे भ्रमण से पर्वत आदि पदार्थ घूमते लगते हैं वैसे ही अज्ञानी को आदि भौतिक भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत परोक्ष है क्योंकि इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। जो नेत्र होते हैं तो रूप दिखता है और जो नेत्र न हो तो न दिखे, इसी प्रकार सब इंद्रियों के विषय है। जो हो तो दिखे नहीं, जो हो तो दिखे नहीं तो न दिखे, आत्मा सदा प्रत्यक्ष है। उसके देखने में किसी और की अपेक्षा नहीं है। हे रामचंद्र जी, जो इंद्रियों से सिद्ध हो वह असत है, जो जगत ही असत हुआ तो उसके पदार्थ कैसे सत्य हो? इसे इस जगत की सत्यता छोड़कर शुद्ध बोध में स्थित हो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब मैं उस शिला को बोध दृष्टि से देखता तब वह मुझको ब्रह्मरूप लगती, और जब संकल्प दृष्टि से देखता तब पृथ्वी द्वीप समुद्र पर्वत लोक लोकपाल सूर्य चंद्रमा तारांकण पाताल संयुक्त जगत दिखता। जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वैसे ही आत्मरूपी आदर्श में जगत दिखता है। तब देवी ने शिला में प्रवेश किया और मैं भी संकल्प रूपी शरीर से उसके साथ चला गया। हम दोनों जगत के व्यवहार को लांघते गए और जहाँ परमेष्ठी ब्रह्मा का स्थान था वहां जा बैठे। तब देवी ने कहा, हे भगवन, तुम परमेष्ठी से ऐसे कहना कि मुझको यह ले आई है, और यह पूछना कि इसको जो तुमने विवाह के निमित्त उपजाया था फिर क्यों इसका त्याग किया? हे मुनीश्वर, उसने मुझको विवाह के अर्थ उत्पन्न किया था, पर जब मैं बड़ी हुई तब उसने मेरा त्याग किया है। उसको वैराग्य उपजा है और उसे देखकर अब मुझको भी वैराग्य उपजा है। इसी से मैं परम पद की इच्छा रखती हूँ, जहाँ न दृष्टा है न दृश्य है और न शून्य है, केवल शांत रूप है, और जो सर्ग आदि और महाकल्प के अंत में रहता है उसमें स्थित होने की इच्छा है, जिसमें स्थित होने पर पहाड़ की सी निश्चल समाधि हो जाती है। ऐसे परम पद का उपदेश करो। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर वह भर्ता के जगाने के लिए निकट जाकर बोली, हे नाथ, तुम जागो, तुम्हारे गृह में दूसरी सृष्टि के ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ मुनि आए हैं। तुम उठकर उनका अर्घ्य पाद्य से पूजन करो, क्योंकि गृह में अतिथि आए हैं। महापुरुष केवल पूजा से ही प्रसन्न होते हैं। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार देवी ने कहा तब ब्रह्मा जी समाधि से उठे और उनके प्राण देह और नाड़ियों में आकर स्थित हुए। जैसे वसंत ऋतु से सब वृक्षों में रस हो आता है, वैसे ही उनकी दशों इंद्रियों और चारों अंतःकरण में शने शने करके प्राण स्थित हुए और सब इंद्रियां खिलाई। तब उन्होंने मुझको और देवी को अपने सम्मुख देखा और ज्ञान से ओमकार का उच्चारण करके सिंहासन पर बैठे। ब्रह्मा जी के जागने से बड़ा शब्द होने लगा और विद्याधर, गंधर्व, ऋषि मुनि आकर प्रणाम करके स्तुति और ध्वनि से वेद पाठ करने लगे। ब्रह्मा बोले, हे ऋषि, कुशल तो है, तुम इतनी दूर से क्यों आए हो? तुम तो सार असार को जानने वाले हो। जैसे हाथ में बेल का फल होता है वैसे ही तुमको संपूर्ण ज्ञान है, बल्कि तुम ज्ञान के समुद्र हो। ऐसे कहकर उन्होंने अपने निकट आसन दिया और नेत्रों से आज्ञा की कि इस पर विश्राम करो। हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार उन्होंने मुझसे कहा तब मैं प्रणाम करके उनके निकट जा बैठा और एक मुहूर्त पर्यंत देवता, सिद्ध और ऋषियों के प्रणाम होते रहे। उसके अनंतर जब विद्याधर और देवता सब चले गए तब मैंने कहा, हे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता ईश्वर परमेष्ठी, तुम ऊंचे आसन पर विराजमान हो और साक्षात ब्रह्म ज्ञान के समुद्र हो। यह तुम्हारी शक्ति देवी है, जिसको तुमने भार्या बनाने के लिए उत्पन्न किया था और फिर उसे विरस जानकर त्याग दिया। तुम्हारे वैराग्य से इसको भी वैराग्य उपजा है, इसलिए यह मुझको यह ले आई है कि तुम परमात्म तत्व की वाणी से हमको उपदेश करो। सो इससे इसका क्या अभिप्राय है? ब्रह्मा बोले, हे मुनीश्वर, मैं शांत, अजर, अमर रूप हूं, और मुझ में उदय अस्त कदापि नहीं होता। मैं परमाकाश रूप हूँ और अपने आप में स्थित हूँ। न मेरी कोई स्त्री है और न मैंने किसी को उत्पन्न किया है। तथापि जो वृत्तांत हुआ है वह मैं कहता हूँ, क्योंकि महापुरुषों के सामने ज्यों का त्यों कहना चाहिए। हे मुनीश्वर, आदि शुद्ध चिदात्मा चिन्मात्र पद है, उसका किंचन जो अहम होकर फुरा है उसका नाम आदि ब्रह्मा है, वही मैं हूं। जैसे भविष्यत सृष्टि का हो, मतलब यह कि मैं संकल्प रूप दृष्टा और संकल्प रूप हूं, पर वास्तव में आकाश रूप सदा निरावरण हूं और अपने आप में ही मेरी अहम प्रतीति है। उसमें आदि जो संकल्प का फुरना हुआ है उसमें जगत भ्रम रचा है और उस जगत भ्रम में मर्यादा हुई है। संकल्प की अधिष्ठात्री जो ब्रह्म शक्ति है वह भी शुद्ध है। हे मुनीश्वर, उस मर्यादा को युगों के सहस्त्र चौकड़े बीती है, अब कलयुग है। कल्प और महाकल्प की मर्यादा पूरी हुई है, इससे मुझको परम चिदाकाश में स्थित होने की इच्छा हुई है और इसी से इसको निरस जानकर मैंने त्याग दिया है। जब इसका त्याग करूंगा तब निर्वाण पद को प्राप्त होऊंगा, क्योंकि यह मेरी इच्छा वासना रूप है। वासना का त्याग हो तो निर्वाण पद प्राप्त हो। यह जो शुद्ध चित्त कला है इसने धारणा का अभ्यास किया था, इससे इसमें अंतवाहक शक्ति प्राप्त हुई है। अंतवाहक शक्ति से यह आकाश में उपजी है और संसार से विरक्त हुई है। आकाश मार्ग में इसको तुम्हारी सृष्टि दिखी और परमपद पाने की इच्छा से इसको तुम्हारी संगति प्राप्त हुई, इससे तुम्हारी शरण आई है और तुमको ले आई है। जो श्रेष्ठ है वे बड़ों की शरण जाते हैं, यह अपने कल्याण के लिए तुमको ले आई है। हे मुनीश्वर, यह मेरी मूर्ति रूप वासना शक्ति है। पहले मैंने इसको उत्पन्न करके इस जगत जाल को रचा, पर अब मुझको निर्विकल्प निर्वाण पद की इच्छा हुई है, इससे मैंने इसका त्याग किया है। हरि ओम, हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।